जा रहा है न बाहर आ रहा है। अरे उनके बछड़ों को तो देखो, बछड़े दूध पी रहे थे और जब ही कान में बंसी की ध्वनि आई, दूध यहाँ पर लहा रह गया, वो नीचे नहीं गया न ऊपर आया, और बस ऐसे चुपचाप आंख बंद करके बस पी रहे हैं। उनके कान ऐसे कर रहे हैं। वो बछड़े होकर के हम जन्म लेती, गायें होकर के हम स्वच्छंद गति से कृष्ण की हम सेवा कर सकती, उनके पास में चली जाती, आज हमें वो सौभाग्य नहीं। और देखो तो अहो पतंग विहगा मनोयोपनस्मि, ओ ये पक्षी जो पेड़ों पर बैठे हुए हैं वृंदावन में, गोवर्धन की तराई में, कदम्ब के वृक्ष हैं, आम के वृक्ष हैं, कटहल के वृक्ष हैं, कोई कदम्ब के वृक्ष हैं, उनकी डालियों पर बैठे हुए कौन सुख पक्षी, कोयल, मयूर, पपीहा, पपीहा क्या कहता है, प्यू कहाँ कहता है, और कोयल क्या कहती है, राधे राधे रूप में कुहू कुहू, कौन कौन, मयूर के का के माने कौन, राधा जी के मान और धैर्य को, के पर्वत को कौन गिरा सकता है, कृष्ण। और राधा जैसे मतवाले हाथी को, प्रेम के जो मतवाले हाथी हैं, इनके पैरों में सिंकल कौन बांध सकता है, राधा जी का प्रेम और दूसरा नहीं, वो इसलिए के का कौन, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग, एक राधा जी के लिए एक कृष्ण के लिए। सारे पशु पक्षी आए तो वहां के मथुरा के चौकीदार लोग रात में जगाते हैं लोगों को, तो क्या कहते हैं, राधे राधे, वृंदावन के चौकीदार कहते हैं, पशु पक्षी कीट पतंग सभी राधे राधे राधे, कृष्ण का उतना नहीं, राधे जी का वहां पर इतना है ने? तो ये कहते हैं, देखो ये मुनि लोग हैं पेड़ों पर बैठे हुए। मुनि दो प्रकार के होते हैं, एक कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि मैं ही ब्रह्म, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सभी ब्रह्म ही ब्रह्म है, तत्त्वमसि तुम ही वही हो, ये वेद की एक डालिया है उपनिषद वाली। और दूसरी डाली एक है जो वृंदावन में आई है, वो प्रेम की डाली है, उस पर कोयल, पपीहे, सुख पक्षी उस पर बैठते हैं। ये लोग क्या करते हैं, भगवान को देख करके इनका गुणानुवाद करते हुए मयूर नाचते हैं, कोयल कुहक कुहक करके कृष्ण का गुणगान वर्णन करती है, सुख पक्षी लोग क्या करते हैं, कृष्ण कृष्ण ये सब राधे राधे, कोई कृष्ण की महिमा कोई राधे जी की महिमा। ये लोग वैसे मुनि हैं, अर्थात तो इस तरह जो वृंदावन वाले हैं, ये लोग वृंदावन में हैं, ये लोग में से जो कर्मकांडी लोग हैं, जो भगवान की उपासना करके भी उनसे संसारिक वस्तुओं को मांगते हैं, वो कर्मयोगी हैं, वह वेद के रज्जुओं से, तामसिक सात्विक और त्रिगुणमयी रज्जुओं से वो बधे हुए जगत में जन्म में जन्म और मरण के चक्कर में फंसे हुए हैं। दूसरे होते हैं ब्रह्मयोगी, संसार का कुछ नहीं चाहिए, कि उनको मुक्ति चाहिए। मुक्ति माने क्या, मुक्ति कहते हैं मुक्ति ही तू अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, ठीक है मैं समाप्त करता हूं। तो मुक्ति किसको कहते हैं, उन लोगों की ये धारणा है कि मैं ही ब्रह्म हो जाऊंगा, किंतु कभी भी कोई ब्रह्म नहीं हो सकता, जीवात्मा सदा ही जीवात्मा है, कोई भी ब्रह्म न हुआ न आज तक, शंकराचार्य भी ब्रह्म नहीं हुए, उन्होंने अंत में यही गाया गोविंदम भज गोविंद भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते मूढ़मते, ये क्या ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान कर रहा है, कोई भी ब्रह्म नहीं बन सकता है। इसलिए कहते हैं ये सब कैसे हैं, ये लोग गान करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम कर करके और कीर्तन करते हैं, नृत्य करने लगते हैं, ये लोग ऐसे हैं, ये लोग कृष्ण को देख रहे हैं। आ नदी यमुना, यमुना जी को तो देखो, कृष्ण की बंसी ध्वनि सुन करके वह स्तब्ध हो गई है, और नीचे जो जा रहा था पानी वो ऊपर आने लग गया कृष्ण की बंसी ध्वनि से, समाप्त कर रहा हूं, और ऊपर से पानी आ रहा है वहां पर भ्रमर पड़ गया, फूल उसके टूट गए कमल के, और उसको लेकर के कृष्ण के चरणों में उपहार दे रही है। और देखो तो इस तरह से ये गोपियां घरों में बैठी हुई कृष्ण के ये सब लीलाओं का वर्णन कर रही है। यदि कोई साधक सच्चा हो और श्रीमद् भागवत यदि सुना हो इन लीलाओं का इसी तरह से स्मरण करता हुआ जीवन बताए, सहजी रूप में भगवान की कथाओं का गुणगान करता हुआ कृष्ण के उस परम धाम को वृंदावन जो रसमय है उस रसमय वृंदावन में जाकर के रसमय जो राधा कृष्ण है उनकी सेवाओं को पा सकता है सहज रूप में। आज मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। वंशा कल्प आप एक कीर्तन अभी दो मिनट में कर करके और इसको समाप्त करें। कोई कृष्ण संबंधी कीर्तन करें।
यहाँ पर स्वामी जी का जो वर्णन है कृष्ण और राधा का वो सुन रहा था, लगता था जैसे मैं वृंदावन में पहुंच गया हूँ, ऐसा उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया। एक आर्टिस्ट जैसे पेंटिंग करता है और आपको सारा दृश्य दिखाता है, स्वामी जी ने इतना बढ़िया डिस्क्रिप्शन दिया कि लगा कि सब चीज आपके सामने हो रही है। इसके लिए हम स्वामी जी के बड़े आभारी हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे हैं, दे शुड नो दिस ऑल्सो, जन्म और मृत्यु स्वामी जी ने बताया, जो बहुत पीछे है उसको सीखने की कोशिश कर रहा है। आप सब जानते हैं कि जब माँ के गर्भ में बच्चा पैदा होता है, बढ़ता है, ये जो हाथ है पांव है एक सिंगल बर्ड में पैदा होते हैं और वहीं से मृत्यु शुरू हो जाती है। अगर सेल की मृत्यु ना हो तो हमारी पांच उंगलियां ना बने। मृत्यु नहीं होने से स्किन डक्टाइली हो जाती है, उंगलियां सटी रह जाती हैं। आप देखे होंगे कुछ बच्चों में ऐसा हो जाता है। तो मृत्यु हमारी माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। जो हमारे शरीर में जो क्षेत्र हैं, जैसे मुंह है, नाक है और भी जितनी ओपनिंग्स हैं, अगर वहां सेल न मरे तो ये ओपनिंग ना हो हमारे बॉडी में। कुछ बच्चे ऐसे अनफॉर्चुनेटली पैदा होते हैं जिनकी ओपनिंग नहीं होती, तो मृत्यु तो माँ के पेट से ही शुरू हो जाती है। तो हमारा धर्म जो है हजारों वर्ष पहले इस चीज को जाना है, आपका विज्ञान अभी जानने की कोशिश कर रहा है, बहुत पीछे है। तो आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से हम स्वामी जी का बड़ा आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमारी आंखें खोली। और हम प्रार्थना करेंगे जब भी स्वामी जी आए यहाँ पर हमको आके मार्गदर्शन जरूर करें। धन्यवाद।
आरती का समय हो रहा है, दो चार बातें और फिर हम आरती करेंगे। पहले तो हम स्वामी जी को साधुवाद अर्पण करना चाहेंगे और उनसे विनती करेंगे जब कभी आप इस समय हो तो आप जरूर यहाँ आए। दूसरी बात, मेरे जी आप जब भी आती हो हमारा जो भक्ति में लीन कर देती हो, इसके से विनती है कि वो आपका कल्याण करते रहें। गोविंद जी, हमने तो उस गोविंद की बातें सुनी थी, उनकी कथाएं बड़ी विचित्र होते थे, आपके लिए विचित्र कर्म में देखा रहता हूँ। पहले तो भाई आप तबड़े पर पाउडर लगाते हो, सवारते हो और फिर उसको पीसते हो। इसका मतलब यह है कि हमेशा ना करें।